हरे कृष्ण श्री श्री राधा राधिका रमण श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय श्री प्रभुपाद इस्कान पंजाबी बाब मंदिर में आप सबका प्रातःकाल भागवत क्लास में स्वागत है। भाग्यशाली भागवत का सुबह श्रवण करते हैं। भागवत महापुराण के छठे स्कंद के ऊपर चर्चा चल रही है। छठा स्कंद रक्षण या पोषण, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है जब वो संकट में होते हैं, और जब ठीक ठाक होते हैं तो उनका पोषण करते हैं ताकि वो भगवान को पाने का प्रयास जारी रखें। तो रक्षण या पोषण इस अध्याय का नाम है। और अब जो प्रसंग चल रहा है इसमें दो मार्ग वेदों में है, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है गृहस्थ में रह के अपने घर को चलाते हुए काम करते हुए आस्ते आस्ते भगवान की सेवा में लग के और समय आने के ऊपर ठीक तरह भक्ति में स्थित होना। और एक होता है निवृत्ति मार्ग जिसमें संसार में प्रवेश करना ही नहीं, सीधा भगवान की भक्ति में लगना। तो वेदों में ये दो मार्ग सदा से हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने विशेष भागवत मार्ग दिया है और हम सब भागवत मार्ग के उपासक हैं। भागवत मार्ग में सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, ये विशेषता है भगवान की। भगवत गीता में भक्ति दिया, भागवत मार्ग दिया, भागवत है ही भागवत मार्ग। तो ये विशेषता है श्री कृष्ण की, क्रांति है आध्यात्मिक जगत में, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाए हैं आध्यात्मिक जगत में। दो मार्ग होते हुए भी तो वेदों में सब कुछ है, फिर ये देने की जरूरत क्या है। जैसे ये तो सनक आदि ऋषियों से नारद ने पूछा था कि जब वेदों में सब कुछ है तो फिर भागवत उससे अलग क्यों है। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया था, आम के पेड़ में आम का जूस सारे पेड़ में होता है कि नहीं, तो फिर पेड़ को चाकू लगाने से जूस निकलेगा? हाँ, नहीं निकलेगा ना। जब फल पकेगा तब उसमें से आम का जूस मिलेगा। तो वेद के अंदर सब कुछ है लेकिन ऐसे है जैसे पेड़ में जूस है, लेकिन उसका पका हुआ फल भागवत है, रस तब मिलेगा। जो पका हुआ फल, ये भागवत महात्म में सनक आदि ऋषि उत्तर देते हैं नारद जी को। तो भागवत मार्ग विशेष मार्ग है, जो हम भागवत मार्ग के उपासक है। इसलिए एक बार प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन में भागवत धर्म करके कंटिन्यूस उपदेश दिया था 11वें स्कंद पे, पूरा किताब उसका छपा था भागवत धर्म। तो फिर यहां प्रसंग में दक्ष प्रवृत्ति मार्ग का है और नारद निवृत्ति मार्ग का है, लेकिन निवृत्ति मार्ग में होते हुए भी नारद भगवान का भक्त है, वो भक्ति का आचार्य है। लेकिन भगवान को दोनों का पोषण करना है और दोनों का रक्षण करना है। तो यह दोनों मार्ग हैं और दोनों का भगवान की तरफ से रक्षण हो रहा है। अब दक्ष, ये वही दक्ष है जिसने शंकर जी का अपराध किया, वैष्णव अपराध किया, फिर अग्रसमन जगह के ऊपर तपस्या करके भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान के दर्शन के बाद भी पहला श्लोक इस अध्याय का कहता है विष्णु माया से प्रभावित हो गया और सुरसुरी करने लगा। पहला श्लोक इस अध्याय का है विष्णु माया ब्रह्म भ्रमित हो गया भगवान के दर्शन करने के बाद भी। बहुत आश्चर्य लगेगा और भागवत में बार बार आपको मिलेगा, भगवान के दर्शन के बाद भी संसार में लोग फिर फंस गए हैं जब तक किसी भक्त ने उसको पकड़ से नहीं निकाला। ये बार बार भागवत में मिलेगा। अब जहां से शुरू करेंगे, ध्रुव महाराज से शुरू करेंगे, तो भगवान का दर्शन करके आए फिर भी क्रोध आ गया, फिर स्वयंभू मनु ने आके उसको कहा कि नहीं बेटा वो भागवत, किसी ने आके उसको फिर रोका, तब जाके उसके बाद जाके दोबारा भक्ति करने गया। और ये इससे दक्ष के जो पिताजी हैं प्रचेता, शंकर जी से दीक्षा लेकर भगवान विष्णु का दर्शन करके वापस आके क्रोध करके वन सारा जला रहे थे, और वापस नारद ने आके उसको उपदेश दिया है। पृथु महाराज भगवान के अवतार होते हुए भगवान का दर्शन करने के बाद भी जब तक सनकादि कुमार दोबारा नहीं आए तब तक निवृत्ति मार्ग में नहीं गए। ये भागवत में क्रम से बार बार मिलेगा। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से ज्यादा दयालु है, वो भगवान की इच्छा को जानते हैं और उसके अनुसार काम करने के लिए दुनिया को माया मोह से निकाल के भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो ये बड़ा विचित्र सा प्रसंग है जिसमें दक्ष दोबारा भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद प्रवृत्ति मार्ग में सृष्टि मतलब प्रोजेनी अपना संसार बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। पांच जनी के साथ उसका विवाह हुआ। दक्ष, इस दक्ष की पत्नी का नाम पांच जनी है, और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। इसके ऊपर ज्यादा हमको डिस्कस करना नहीं है, लेकिन 10,000 पुत्र एक ही समय एक जैसे सुंदर से थे ऐसे वर्णन आता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये तो बाद में पांडवों के जमाने में भी गंधारी के गर्भ से गिरे हुए टुकड़े को व्यास देव ने 100 मटकों में डाल दिया और 100 कौरव पैदा हो गए एक समय में। ये तो द्वापर के समय की बात है, और ये बात है उससे बहुत पहले की। तो ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए उनके पास इतना विज्ञान था, और ये कोई असंभव नहीं है। अगर साइंटिफिकली देखें तो मिलियंस स्पर्म से ज्यादा जो है एक समय में हास होता है, और वो मिलियन पैदा कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ऐसा नहीं कि नहीं है, उनमें से एक सक्सेसफुल होता है, ये तो सिलेक्शन का रूल है, लेकिन इतने पैदा हो कोई मुश्किल नहीं है, इट इज पॉसिबल। क्यों, इतना तो पहले से प्रोडक्शन है ही, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो 10,000 बच्चे उसने पैदा किए, और बच्चों को कहा बेटा अब आप संसार बढ़ाओ। लेकिन बहुत बड़ी बुद्धिमानी की बात समझ में आने की ये है, हाँ संसार तो बढ़ाएं, लेकिन पहले तपस्या करके अपने आप को संसार अच्छा बनाने के लायक तो बनाएं। ये तो अभी भी प्रणाली चलती है कि ब्रह्मचार्य में 25 साल रह के अपने अपने जो है शक्ति जिससे बच्चे पैदा करना है उसकी रक्षा करनी है। उसके बाद दो प्रकार के, एक ब्रह्मचारी नैष्ठिक होता है, आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, दूसरा ब्रह्मचारी बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन इतनी देर तक तो अपने आप को साधना करके और शक्तिशाली बनाना है ताकि जो बच्चे पैदा हों वो किसी काम के हो दुनिया में। तो इन बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम अपने आप को इसके योग्य बनाने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। और तपस्या करने चले गए जहां सिंधु सागर से मिलती है, और उस स्थान का नाम नारायण सरोवर, जहां ऋषि लोग रहते थे। अभी भी नारायण सरोवर कच्छ में है, कच्छ भुज में समुन्द्र के किनारे पे, एक तरफ समुन्द्र है एक तरफ छोटा सा सरोवर है, उसमें पानी मीठा है। नारायण सरोवर नाम से अभी तक प्रसिद्ध स्थान है, कभी जाके देखा जा सकता है। हम तो गए देख के आए हैं, उसको मेंटेन नहीं है इतना, लेकिन सरोवर है। तो वहां तपस्या करने लगे, और तपस्या इतनी अच्छी कर रहे थे कि नारद जी को ध्यान आया कि इतनी तपस्या करने के बाद फिर वापस संसार में जाके फंसेंगे। वैसे ही गली में घूमने वाले गंदे होते जा रहे, जाने दो, ये तो अच्छे हैं, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अब कहां जाएंगे, फिर दोबारा जाके संसार में फंस जाएंगे। लेकिन नारद जी ने उनको आके 3 श्लोकों में एक रहस्यमय, जैसे पुराने जमाने में देते थे ना क्या कहते थे इसको, आप लोग क्या कहते हैं, परेली, परेली परोली परेली जैसे कहते, इस तरीके की एक भाषा बोल दी। इस संसार में एक ही पुरुष है और एक एक खड्डा है, होल है, उसमें गिर गया, एक स्त्री है नीचे और वो वैश्या है, और अंदर नदी बहती है, दोनों तरफ बहती है, और एक हंस है अंदर, और ऐसे, और तेज तेज जो है चाकू छुरी से भी तेज, और अस्त्र वहां चलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसे कुछ बोल दिया नारद जी ने, और कुछ कहा नहीं। लेकिन बच्चों की तपस्या के कारण बुद्धि बहुत व्यवसायात्मिक हो गई थी, उनकी बुद्धि नारद के शब्दों को समझने का प्रयास स्वयं करने लगे, और जैसे ही नारद के शब्दों को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतनी तपस्या करने के बाद, माने समझ लो कि वो सांप सीढ़ी में 98 तक कोई पहुंचा हो, और फिर सांप के मुंह में जाए कि घर में जाए, दोनों से कौन सा अच्छा है, भाई घर में जाना चाहिए ना, और अगर हमें नहीं जाएंगे तो सांप के मुंह में जाएंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर 25-30 पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर पता नहीं कब वापस घर तक पहुंचे। उन्होंने निर्णय किया कि अब हमको संसार में फंसना नहीं है। तो उस जो एलोगरी जो प्रोली बोली है नारद ने, उसका जो लास्ट लाइन है, उसकी एक्सप्लेनेशन ये जो हरियाशम उनका नाम है, 10,000 का हरियाशम, उन्होंने इसका अर्थ क्या निकाला है वो आज हम समझेंगे। बाकी सब अर्थ अभी तक आप पढ़ के आए हैं, सुनते आ रहे हैं। एक राजा है, भगवान ही है दुनिया का मालिक, एक स्त्री कौन सी है जो वैश्या है, हमारी बुद्धि रजोगुण में आने के बाद ये बुद्धि हमारी वैश्या है, और इस बुद्धि को स्त्री का रूप हमने चौथे स्कंद में भी पढ़ के आए हैं, कौन सा, पुरंजनी में, ठीक है। और एक पुरुष है जो स्त्री वैश्या से शादी करता है, वो हमेशा दुखी रहता है, वैश्या का पुरुष तो दुखी ही रहेगा ना, वो कौन सा पुरुष है जो वैश्या से शादी करता है, जीवात्मा, जीवात्मा बुद्धि से तदात्म्य कर लेता है, वो वैश्या से शादी कर ली, और वो रोज अपना रूप बदलती रहती है। प्रभुपाद ने एक बड़ी अच्छा लाइन लिखी है कि हमारे इस्कान के भक्तों को और कोई प्रोफेशन नहीं है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही वस्त्र है, एक वेशभूषा है, रोज फैशन करने की जरूरत नहीं है, सर मुंडा हुआ है, तिलक लगा है, धोती पहनी है, कोई नए फैशन, इतनी दुनिया में फैशन आया, ये आया, वो हमारे लिए कोई फर्क पड़ता है, वही है कि नहीं, बोला एक वेशभूषा हमने ये बहुत आसान सा काम कर दिया कि नहीं कर दिया, नहीं तो रोज रोज परेशान है, रोज कितने फैशन आ गए। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सा एक पर्पट लिखा है। तो इस एलोगरी में वो दो तरफ की नदी नीचे जाता है, वो बिल्व शब्द बिल्व सर्ग नीचे वाले जो लोग हैं उनका वर्णन है, और उधर जाने के बाद वापस कोई नहीं आता है, वो उधर ही भटकता रहेगा इस दुनिया के माया जाल में। दो तरफ नदी बहती है कि आदमी जन्म लेता है फिर मरता है, ये दोनों तरफ चलती रहती है। लेकिन बुद्धिमान इसमें कोई हंस जैसा हो जो सच को जानने का प्रयास करे और झूठ को त्याग दे। अब आज जो श्लोक है इसमें वो कौन सी तेज छुरी है जो सबको काटती है और किसी का भी ध्यान नहीं रखती, किसी का भी लिहाज नहीं करती, चाहे तो उसके ऊपर आज का श्लोक है। आइए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। काल चक्रम भ्रमीति क्षणम सर्वं निष्कर्ष जगत स्वतंत्रम अबुद्धस्येह किमसत्करं भीर भवेत्। कालचक्रं भ्रमीति क्षणम् सर्वं निष्कर्ष जगत् स्वतंत्रम् अबुधस्येह किमसत्करं भिर्भवेत्। कालचक्रं भ्रमीति क्षणम् सर्वं निष्कर्षजस्य जगत् स्वतंत्रम् अबुधस्येह किमसत्करम् भवेत्। कालचक्रम् भ्रमेति क्षणम् जन्म निष्कर्षय जगत्। सर्वनिष्कर्ष्य जगत् स्वतन्त्रम् अबुधस्येह किमसत् कर्म भवेत्। माताजी कालचक्रम् भ्रमेति ते क्षणम् कालचक्रम, नित्य काल का चक्र, भ्रमी स्वत घूमता हुआ, तीक्ष्णम अत्यंत तेज, सर्वम समस्त, निष्कर्षस्त हांकते हुए जगत संसार स्वतंत्र तथा कथित विज्ञानियों तथा दार्शनिकों की परवाह न करते हुए अबुधस्य इस काल के नियम को न जानने वाले इस काल के नियम को का इह इस भौतिक जगत में किम असत कर्म भी ही भावेत। क्षणिक सकाम कर्मों में लगने से क्या लाभ। अंग्रेजी में इसका एक बार मैं अर्थ पढ़ लेता हूं, आप देख लो। ओके, नारद मुनि ने तेज छुरी तथा वज्रों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। अब ये कहां की थी, ये की थी जब नारद जी ने इनको तीन श्लोकों में प्रोली बताई थी, एलोगरी बताई थी, और उसमें शब्द बताया था इसके लिए क्षौर पव्यम स्वयं भ्रमी। क्षौर पव्यम स्वयं भ्रमी एक ऐसी मशीन है जो तेज छुरी जैसी, वज्र जैसी है और अपने आप तेज चलती रहती है। वो क्या है ये समझ के हमको बता रहे हैं, इन्होंने हरियासव ने अपने आप समझ लिया है। तो नारद मुनि ने जो ये कहा था, लास्ट लाइन है नारद जी की जो प्रोली है उसकी ये लास्ट लाइन है। तो नारद मुनि ने जो कहा था तेज छुरी तथा वज्र से बने एक भौतिक वस्तु की बात की थी, हरियशो ने इस रूपक को इस प्रकार समझा। नित्य काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, समय बहुत तेजी से चल रहा है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हुआ है। काल का चक्कर बना हुआ, छुरे उसमें लगे हुए, जो चीज सामने आती है उसको काटता जाता है, इसका अर्थ ये, वो चलता है और जो सामने आएगा उसको काटेगा। ये काल अबाध रूप से मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है, तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। ये सारा संसार काल चक्र के सहारे चल रहा है। आपने कभी महाभारत में देखा था, जब पहले महाभारत दिखाते थे काल चक्र दिखाते, मैं काल हूं, ये दुनिया सारी को मैं चलाता हूं, तो वो दिमाग में चक्कर को लाएंगे तो काल ऐसे चक्कर की तरह चलता है। और वैसे भी पांचवें स्कंद में इस काल का बहुत बड़ा चक्कर बताया है, वो कैसे ये काल दिन रात कैसे बनते हैं, पूरा चक्कर इसका बताया है, वो जो एक व्हील और एक्सल करके इसको बताया, तो इसको काल चक्कर बोलते हैं। यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करके करने का प्रयास नहीं करता। अब ये हमारे लिए, ये हमारे सोचने के लिए, अभी तक तो थी सिद्धांत, अब हमको सोचना है। आप ये समझ लो, यदि मनुष्य की जगह आप अपने आप को लगा लो, यदि हम, ऐसे समझ लो, यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता, वो क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ लेता हूं एक बार महाराज के लिए। नारद मुनि हैज स्पोकन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ शार्प ब्लेड्स एंड थंडर बोल्ट्स। द हरियाश हैव अंडरस्टूड दिस एलोगरी एज फॉलोज। इटर्नल टाइम मूव्स वेरी शार्पली as if made of razors and thunderbolts, uninterrupted and fully independent, it drives the activities of the entire world. If one does not try to study the eternal element of time, what benefit can be derived from performing temporary material activities? जा रहा है अंदर में कुछ, 10,000 विचार कर रहे थे। इसका मतलब ये बहुत से लोगों को समझने के लिए, एक आधे का होता तो चलो बात वो छोड़ देते, बहुत लोगों को समझने का विषय है। और 100% रिजल्ट नारद के, नारद जी के प्रीचिंग के, 100 इतने सारे के सारे साधु बन गए। तो अब समय को समझना अगर हम प्रयास नहीं करते हैं और काम में लगे हैं तो हम मूर्ख हैं, इस श्लोक का अर्थ ये। अगर हम काल की गति को नहीं समझते हैं कि काल हमारे को रोज खाता जा रहा है, हम काल के गाल में पड़ते जा रहे हैं, और काम में लगे हैं और काल की गति को न समझकर और इस दुनिया में फंसे रहेंगे तो हम मूर्ख हैं, इसका अर्थ ये। अगर साधारण भाषा में इसका अर्थ करें तो ये अर्थ है। अब बताइए कि मूर्ख ज्यादा है इस दुनिया में कि बुद्धिमान ज्यादा है? हाँ, पक्का है कि नहीं? अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि दुनिया में अंधे ज्यादा हैं कि आंखों वाले? बीरबल ने कहा अंधे। बोला अंधे कैसे ज्यादा है, सबकी दो आंखें हैं। बोला महाराज अंधे ज्यादा है। बोला प्रूफ करो। बोला महाराज आप हमारे साथ चलो साइकिल चलाते हुए समझो। उसने कुछ और कहा था, और जब साइकिल, अब मानो शहंशाह अकबर दिल्ली की सड़क के ऊपर साइकिल के ऊपर, लोग पूछते महाराज क्या कर रहे हो, तो बीरबल बोलता लिखो अंधों की लिस्ट में, महाराज क्या कर रहे हो लिखो अंधों। सभी यही पूछ रहे हैं, कोई अब साइकिल चला रहे देख नहीं रहे हो क्या, इसमें पूछने की क्या बात है? तो अंधे ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए भाई? इतना बड़ा आदमी, मानो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आज साइकिल लेके चांदनी चौक में आए, सब लोग क्या कर रहे, तो अंधे ही हो गए कि नहीं हो गए? ये सब अंधे हैं। तो अब मूर्ख हैं सबके नहीं है, काल की गति को नहीं जानते हैं, प्रतिदिन मौत के निकट जा रहे हैं और फिर भी संसार के काम में लिपटे हुए हैं। एक पहले एक बहुत सुंदर चित्र छपा था, सांप के मुंह में मेंढक, मेंढक को सांप ने गले तक निगल लिया और फिर भी मेंढक जबान बाहर लपक के कुछ खाने का प्रयास कर रहा था। कैसे लग रहा है ये चित्र? लोग मरने वाला है, थोड़ी देर में ना सांप निगल जाएगा, फिर भी जबान लपका रहा है। ये सब उस रूपक से अपने आप को देख लो। अब जैसे मैं 80% सांप के गले में पड़ा हूं, कोई आप में से 25 है, कोई 15 है, 18 है, 20 है, यहां कोई भी 20 से कम तो है नहीं। 20% से ज्यादा तो सांप के गले में सब पड़े हैं, जितने साल उतना परसेंट तो गिन लो। अब फिर भी जबान बाहर लपक के भोग का प्रयास करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? नारद जैसे लोग कहेंगे मूर्ख हैं। अब कब जाके समाप्ति इनकी होने वाली है, फिर भी यही करते रहेंगे और कुछ करने को नहीं है। ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब श्रील प्रभुपाद ये दिस वर्स एक्सप्लेन दी वर्ड्स क्षौर पव्यम स्वयं भ्रमि। ये उस श्लोक का लास्ट लाइन है जो नारद जी ने बोला था। ये श्लोक है आठवें श्लोक का लास्ट लाइन है और इसका अर्थ है एन ऑटोमेटिकली रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ शार्प रेजर्स एंड थंडरबोल्ट्स। एक ऐसा यंत्र है जो अपने आप चलता है, काल चक्र, और जो सबको काटता है और तेज और तीक्ष्ण है। ये इसका अर्थ ये श्लोक है। ये प्रभुपाद जी ने पहली लाइन लिखी है कि ये श्लोक नारद जी के आठवें श्लोक की लास्ट लाइन का अर्थ है। इट इज सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। और फिर प्रभुपाद जी एक वाइज मैन की कहावत, बुद्धिमान व्यक्ति की कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर, मतलब समय और छोली, पानी की जो आती है किसी के लिए रुकती नहीं है, रुकती है। हा? कोई कहे कि महाराज स्नान करने आएंगे थोड़ी देर के लिए, छोली रुक जाओ, रुकेगी? हाँ, नहीं रुकेगी ना। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, हिंदी में क्या इसका अर्थ लिखा है? काल, हाँ, कि काल तथा लहरें किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती। काल या पानी की लहरें। अब क्या, एक आदमी नहाने के लिए जा रहा था समुद्र में, सुबह का हमको 7 बजे जाते हुए मिला, हम शाम को वापस आए, अभी गमछा लेके बैठा है समुद्र के किनारे, नहा लो ना। बोले छोलियां आ रही हैं, बंद हो जाएंगी, फिर नहाऊंगा। अरे भाई, छोलियां कभी बंद नहीं होंगी दुनिया में। नहीं, फिर कब नहाओगे? बोले नहीं, बंद होंगी, फिर नहाऊंगा। नहीं, बंद होगी, नहाना है तो इसके अंदर कूदना पड़ेगा, छोलियों के बीच में नहा के आओगे तो नहा सकते हो, नहीं तो छोलियां बंद होने वाली नहीं। तो ये दुनिया का काल रुकने वाला नहीं है हमारे लिए। नहीं, थोड़ा मेरे को काम है, रुक जाओ, काल रुकेगा क्या? नहीं रुक सकता है। तो प्रभुपाद ने एक एक विजडम का दो लाइन बता दी और फिर प्रभुपाद जी इस विजडम को सपोर्ट करने के लिए चाणक्य नीति शास्त्र से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयुष उम्र, आयुष मतलब जी, आयु का मतलब सांस, साल नहीं, सांस। ये सांस जो हमारा एक एक सांस है, वैसे आयु सांस को गिनते हैं, साल नहीं गिनते हैं। हम सांस लेके आए हैं गिन के, इसलिए आयुष्मान भव कोई आशीर्वाद देता है तो उसका क्या फायदा? उसका फायदा ये है कि अगर हम संयमी बनेंगे, सांस थोड़े कम ही लेंगे तो ज्यादा जिएंगे, भागा दौड़ी कम करेंगे तो ज्यादा जिएंगे। इसलिए पुराने लोग सांस को बेकार में खराब नहीं कमाते थे, एक भी सांस बेकार नहीं जाना चाहिए। तो आयुष क्षणम एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। सोने की मुद्रा करोड़ों की समय मिलियंस में दे दो तो भी एक क्षण आपको वापस नहीं मिलेगा। और फिर न चैन रथकम नीतिम का नीति ही काच हानिस्त तो अधिक कहा। तो एक क्षण जाने के कितना हानि होती है, कितना नुकसान होता है, कभी इसका विचार किया? जब एक क्षण को किरोड़ों सोने की मुद्राएं देने से वापस नहीं किया जा सकता तो एक क्षण गंवाते हैं कितनी मूर्खता है। क्यों जी, बात समझ में आ रहा है? और कितना समय हमारा बर्बाद हो रहा है रोज का बेकार में। तो कई बार हमने कहा है, फिर भी एक मिनट के लिए इस बात को दोबारा कहते हैं। विश्व विजयी सिकंदर जब भारत में आया था और बीमार होकर मरने के पास पहुंचा तो अपने सेनापति को कहा कि आधा राज दुनिया का आपको देता हूं, आप मेरे को एक महीना आपकी आयु दे दो, मैं अपने देश वापस जाके मेरी मां से मिलूंगा। उसने कहा, महाराज मैं अपना जीवन का समय आपको कैसे दे सकता हूं? सिकंदर ने कहा, एक दिन दे दो, सारा राज देता हूं, साम्राज्य पूरा देता हूं। उसने बोला, ये भी संभव नहीं है महाराज। तब सिकंदर ने कहा, सारी जिंदगी लगा के पूरी दुनिया को मैंने कब्जा किया, विश्व विजयी बना, آج وہ ساری دنیا میں داؤ پہ لگا رہا ہوں اور زندگی کا ایک دن نہیں مل رہا ہے. ساری زندگی کی کمائی داؤ پہ لگاتا ہوں, زندگی کا ایک دن نہیں مل رہا ہے. اس لیے دنیا والوں, سکندر کو جب قبر میں ڈالو تو دونوں ہاتھ کھلے باہر رکھنا, دنیا دیکھے کہ سکندر خالی ہاتھ دنیا سے گیا. یہ سکندر بہت بڑی شکشا دے کے گیا تھا. دونوں ہاتھ قبر سے باہر رکھنا کھلے کہ سکندر خالی ہاتھ دنیا سے گیا. جب سکندر دنیا کا مالک خالی ہاتھ گیا تو آپ چھوٹا سا گھر دکان مکان والے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ کچھ جائے گا کسی کے ساتھ؟ نہیں جائے گا نا. تو ایک کھن بھی ہم کو نہیں مل سکتا ہے, کتنا بھی زندگی کی کمائی داؤ پہ لگائیں تو بھی زندگی کا ایک کھن نہیں مل سکتا. اس لیے ایک سیکنڈ بھی بیکار میں ہمارا کہیں جاتا ہے تو سب سے بڑا لاس ہے, سب سے بڑا گھاٹا ہمارا ہے ایک کھن. اس لیے بہت سندر ایک شبد لکھا ہے سنتوں کی وانی میں, سوانس سوانس سمر گووند, ایک ایک سانس کے ساتھ گووند کا نام سمرن کرو. ایک سانس بھی خالی نہیں جانا چاہیے, جو سانس خالی گیا وہ بیکار گیا. تو 24,000 سانس سے اوپر لیتے ہیں دن رات میں, تو کم سے کم 24,000 بار تو بھگوان کا نام لینا ہی چاہیے. ایک سانس میں ایک نام تو ہو جانا چاہیے نا. ایک سانس بیکار نہیں جانا چاہیے. اس کو سمجھانے کی ایک کتھا پہلے ہم نے پڑھی تھی, اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک کسان بیچارہ لکڑی بیچتا تھا اور بازار سے لکڑی روپیے کی اٹھانے کی لاتا تھا, گزران کرتا تھا. مہاراج کوئی راجا بھٹکتا وہاں گیا, پانی پلا دیا, سوکھی روٹی کھلا دی, راجا خوش ہو گیا, اس کو ایک باغیچہ دے دیا. ایک 6 مہینے کے بعد راجا کا من ہوا کہ دیکھوں تو صحیح, میں نے اس کو اتنا بڑا باغیچہ دیا ہے, ابھی سوکھی ہے کیا؟ ارے وہ ابھی بھی لکڑی بیچ رہا ہے بازار میں اور وہی روپیہ روز لے رہا ہے. باغیچوں کو جا کے دیکھا تو آدھا باغیچہ اجڑا پڑا ہے. بڑا مورکھ, تم کیا کر رہا ہے؟ تمہارے کو چندن کا باغیچہ دیا تھا, اس کی تم لکڑی بازار میں جا کے روپیے کے بھاؤ بیچ رہا ہے. تم جا کے ایک مارکیٹ میں دیکھو اس لکڑی کی قیمت کتنی ہے. ارے ایک چندن کی لکڑی تو ہزاروں روپیے کی ہے اور میں پوری روز لکڑی کا بھری اٹھا کے جا کے بیچتا ہوں روپیے میں. مہاراج نے تم کو اتنا بڑا اچھا موقع دیا تھا سکھی ہونے کا, تم نے اس کو بیکار میں لکڑی کے بھاؤ بیچ کے اپنا ایک بچہ ہے باقی پیڑ, اس کے سہارے بھی بچو گے تو تمہاری زندگی گزر جائے گی. یہ سانس وہ چندن کی لکڑی کی طرح ہے, اس کو بیکار میں نہیں گنوانے ہیں. یہ بھگوان نے ہم کو ہمارے اچھے کرموں کے کارن مانو شریر دیا ہے. کہیں ہم نے اچھے کرم کیے ہیں تب مانو شریر ملا ہے. راجا نے ہم کو چندن کا باغ دیا ہے اور اس کا ایک ایک سانس جو ہے وہ کروڑوں سے بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے. تو اس کا ویرتھ میں گنوانے کا کوئی ضرورت ہے کیا؟ اس کو بیکار میں گنوانا چاہیے کیا؟ نہیں گنوانا چاہیے. چندن کے باغیچے کی لکڑی مورکھتا میں آگ میں جلا کے اس کے اوپر پانی گرم کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسے چھوٹے کام کے تو یہ سانس مانو شریر کے, ایسے تو باقی جیووں کے بھی سانس وہ بھی اٹھا رہے ہیں, وہ سانس تو ان کے بیچاروں کے ایسے ہی جاتے ہیں بھوگ میں, لیکن ہمارا بھوگ میں کیوں جائے؟ پربھوپا جی لکھتے ہیں کروڑوں ڈالر دے کر بھی جیون کا ایک کھن واپس نہیں لیا جا سکتا. اس لیے منش کو یہ سوچنا چاہیے کہ یدی وہ اپنے جیون کا ایک کھن بھی ویرتھ میں گوا دیتا ہے تو کتنی بڑی کھتی ہوتی ہے. ہرے کرشن. اس لیے پربھوپا جی نے کبھی کہا کہ لوکلائز ہو کے رہو, زندگی کا بہت سمے بچ جائے گا. لوکلائز ہو کے رہنے کا مطلب ہے ہر آدمی کا آج کے دن میں, آج کے جگ میں 3 سے 4 گھنٹے روڈ کے اوپر ٹریولنگ میں جاتے ہیں کم سے کم. ہاں کتنا قیمتی سمے ہے 3-4 گھنٹے اور روڈ کے اوپر جاتے ہیں. بس بدھیمان کوئی بھکت ہے تو اس میں بھگوان کا نام جپ کے اس کو سارتھک کر سکتا ہے, نہیں تو سب کا ویرتھ جا ہی رہا ہے. اور اس سے بھی مورکھ دیکھیں آپ نے, ٹرین میں روز آتے ہیں لوکل میں 2 گھنٹے اور کیا کرتے ہیں ٹرین میں بیٹھتے ہی؟ چار بیٹھیں گے कपड़ा बिछाएंगे, ताश निकालेंगे, बैग बीच में रखेंगे और दो घंटे अच्छी तरह से समय का सत्यानाश करेंगे। देखा है ना, ये उन लोगों के लिए लिखा है। कितना टाइम बेकार गंवा रहे हैं लोग। पुराने जमाने के लोग एक जगह रहते थे, हमेशा दो तीन घंटे शाम को होते थे और कथा सुनते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं भारत इसलिए महान था कि 50 साल पहले यहाँ हर गांव में रात को भागवत कथा लोग सुनते थे, रामायण कथा सुनते थे। ये हर गांव का नहीं, लोगों पर समय था ना, वो समय अभी भी है। एक तो जाता है रोड के ऊपर, दूसरा जाता है टीवी के ऊपर। ऐसे नहीं कि समय खत्म हो गया है, समय अभी भी उतना है। कुछ समय तो 24 घंटे से कम तो नहीं गए होंगे। अब रिसेशन आए, पैसा कम हो जाए, समय तो कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे से कम हुआ है क्या? तो क्यों नहीं बच में हमारा टाइम हमारे पास हो रहा है? कितना नुकसान एक समय का। इसलिए लोकलाइज, प्रभुपाद लोकलाइज, एक जगह रहोगे और सब काम बुद्धिमानी से एक जगह करोगे तो बहुत समय बच जाएगा। आज नहीं तो आगे चल के वैदिक विलेज हमारे सर्वाइवल, आने वाले मानो के 100-200 सालों में जो एकांत में कहीं छोटी जगह में अपनी जरूरत की चीजों का व्यवस्था करके रहेगा वो सुखी रहेगा। मानो के यहां जब स्ट्राइक होती है, चक्का जाम होता है, तो आपका काम सब बंद होता है कि नहीं होता है? जा सकते हो ऑफिस तक? कोई आदमी खरीदार भी नहीं आता है ना। चक्का जाम सब कुछ बंद होता है कि नहीं होता है? और पेट्रोल बंद हो जाए, नहीं निकले धरती से, तो क्या करेंगे? सारी दुनिया बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसलिए लोकलाइज होना बहुत जरूरी है आगे भविष्य वर्ग के लोगों के लिए। उत्तम खेती, बढ़ता व्यापार, नीच नौकरी, भीख मांगना बेकार, ये बुद्धिमान कह के गए। उत्तम खेती, बढ़ता हुआ व्यापार, नीच नौकरी, भीख मांगना बेकार। अब नौकरी के पीछे सारे हैं, सारे ही नौकरी के पीछे हैं। और समय अपना नहीं है, नौकरी के मतलब समय बेच दिया हमने किसी को। तो यहां समय का कदर करने की बात चल रही है। जीवन के लक्ष्य को न समझते हुए पशु की तरह जीवन बिताते हुए मनुष्य मूर्खतावश ये सोचते हैं कि शाश्वतता नाम की कोई वस्तु नहीं है और उसका 50-60 या हद से 100 वर्ष का जीवन ही सब कुछ है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग दुनिया में समझते हैं कि हम जो 60-70-80 साल तक जिएंगे इतनी ही जिंदगी है, इससे पहले कुछ नहीं था, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं था, इसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर तो सब गलत हो जाएगा। क्यों? कि किसी को गरीब, किसी को शाहूकार, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, ये जिसने बनाया उसने तो नाइंसाफी की है, उसने तो अन्याय किया है। लेकिन भगवान तो न्यायकारी है। इसका मतलब पहले हम कुछ करके आए हैं तब हमको ये मिला है जो अब भोग रहे हैं। इसका मतलब अब जो हम करेंगे इसका परिणाम हमको आगे भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस चलता हुआ नित्य शाश्वत हमारी यात्रा है, उसमें ये जीवन हमारा स्टेज के ऊपर एक पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, ड्रामे का एक पार्ट हम प्ले कर रहे हैं। इससे पहले भी ड्रामा है और इसके बाद भी ड्रामा अनफोल्ड होगा। तो जो ये नहीं जानता है वो मूर्ख है। वो समझता है ये जिंदगी खा पी के खत्म करनी है, ये तो पशु वृत्ति है, ये पशु जैसी की बुद्धि है। आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी समाना, ये पशु बुद्धि है। काल शाश्वत है। काल शाश्वत क्योंकि कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो। भगवान भगवत गीता में काल के लिए कहते काल मैं हूं, कालो अस्मि काल मैं हूं। भगवान का अव्यक्त रूप काल है जो दिखता नहीं है लेकिन दुनिया सारी का संचालन चला रहा है। क्या करते हो भगवान आप? काल हो तो कालो अस्मि, काल का एक अर्थ समय और काल का दूसरा अर्थ मौत है। कालो अस्मि, लोक क्षय, पूरी दुनिया को नाश करता हूं, जहां जहां चलता हूं रोनता हुआ जाता हूं और सब समाप्त कर देता हूं। कालो अस्मि लोक क्षय प्रबद्ध हो अहम, मैं काल को, काल मेरा स्वरूप है जो संसार को पैदा करके चला के और फिर नाश करता है। तो शाश्वत है, शाश्वत का मतलब सदा रहने वाला है। और इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने शाश्वत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने शाश्वत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसका मतलब क्या? इसका क्या अर्थ होगा? प्रभुपाद ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है यहां, इसमें वो अच्छा नहीं लिखा है। वन फूलिशली थिंक दैट देर इज नो एटर्निटी एंड दैट दिस लाइफ स्पेन ऑफ 50-60 आर एट लीस्ट एट द मोस्ट 100 ईयर्स इज एवरीथिंग। दिस इज ग्रेटेस्ट फूलिशनेस, प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी, दिस इज ग्रेटेस्ट फूलिशनेस। टाइम इज एटर्नल एंड इट इज मटीरियल एंड इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड इन द मटीरियल वर्ल्ड वन पासिस थ्रू डिफरेंट फेसेज ऑफ हिज एटर्नल लाइफ। डिफरेंट फेसेज ऑफ हिज एटर्नल लाइफ मतलब हमारा जीवन शाश्वत और नित्य है, उसका कुछ हिस्सा इस दुनिया में हम बिता रहे हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और फिर मृत्यु के बाद दूसरा जीवन शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा समय, एक फेस समझते हैं ना, फेस एक थोड़ा सा दौर, एक दौर। ये हमारा मानुष जन्म का अच्छा दौर है। लोग कहते हैं ना हमारा भी कोई अच्छा दौर था, ये अच्छा दौर चल रहा है, इसके बाद अगर हमने टाइम गंवाया तो गधे वाला दौर आएगा, वो बुरा दौर आएगा, उसमें जाके गधा बनना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर धोबी कपड़े उठाएगा और तब भी हम आराम से घास खाते हुए घूमते फिरेंगे। तो दौर हमारा एक इस मानव जन्म में अच्छा है, इसको संभाल लेना चाहिए। अब कहा, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं दो शब्द यहां, मतलब इस दुनिया में, यहां पर काल की उपमा तेज छुरी से दी गई है। काल को क्या बोला है? तेज छुरी। काल चक्रम भ्रमति तीक्ष्णम, तेज छुरी की तरह। अब प्रभुपाद देखिए, छुरा तो बाल बनाने के लिए होता है, किंतु यदि ठीक से नहीं चलाया जाता है तो गजब ढा सकता है। इसका क्या अर्थ है? इसका प्रभुपाद लिखा है रेजर इज टू शेव, वो तो ठीक है बाल को साफ करने के लिए रेजर तो है, लेकिन थोड़ा सा नीचे ऐसे चलाया जाए तो वो भी गलत पे चलता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे ऐसे चलाया जाए तो समाप्त। ऐसे ये काल हमारे को भगवान को प्राप्त करने के लिए, शेव करने का मतलब अच्छा बनने के लिए है, थोड़ा साफ हो जाए, साफ होने के लिए है ये काल हमको मिला है, थोड़ा समय अच्छा काम कर लें इससे, और नहीं करेंगे तो अपना गला काट रहे हैं। अंग्रेजी में इसका यही लिखा है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि अपनी आयु का दुरुपयोग करके आपत्ति न खड़ी करे, उसे अत्यंत सावधान रहकर अपने जीवन का उपयोग आध्यात्मिक साक्षात्कार या कृष्ण भावना अमृत के लिए करना चाहिए। ये प्रभुपाद ने हमको राय दी है। अब आपकी क्या इच्छा है आप जाने, समय चला जाएगा, किसी के लिए नहीं रुकेगा। चाहो तो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, और चाहो तो आखिर में राख दुनिया की हाथ में आएगी, वो आपको भी नहीं आएगी, आपके पोते उठा के जाके गंगा में डाल के आएंगे। वो राख, ये सारी दुनिया की कमाई आपकी, अंत में राख की मुट्ठी, वो भी आपको हाथ नहीं आएगी, वो भी पोते जमुना में जाके डाल के आएंगे, गंगा में डाल के आएंगे। और एक तरफ भगवान मिलेगा। अब समय आपका आपके हाथ में किस काम में लगाते हैं। प्रभुपाद जी का कम से कम 2 घंटे तो भगवान के नाम जपने में लगा लो तो आपके कम से कम एक एक श्वास सार्थक हो जाएगा। इतना तो कर लो कम से कम, बाकी ठीक है शरीर है उसको भी चलाना है। तो हरियाश्वर ने तो ये समझ लिया कि हमको संसार में फंसना नहीं है, दुकान घर मकान बनाना नहीं है, घूमते फिरेंगे बेफिक्र होकर। लेकिन अब तो हम फंसे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं वो अपने आप को निकालने का प्रयास करें और जो नहीं फंसे हैं वो नहीं फंसे, इस झंझट में नहीं पड़े, ये दोनों के लिए खुला रास्ता है। समय चला जाएगा, जो फंसे हुए हैं वो समय कुछ भगवान का सावधानी से जप करें कि समय बीतता जा रहा है, किसी में हमारे लिए रुकेगा नहीं, कल जप कर लूंगा, कल क्लास में आ जाऊंगा, ये मूर्खता का शब्द है, कल कभी नहीं आएगा। सब काम छोड़ के, पुराने जमाने की कहा 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, हरि कथा करनी चाहिए, ये समय का सदुपयोग है। सब काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए, 1000 करोड़ काम छोड़ के भजन, 1000 काम छोड़ के टाइम से भोजन करना चाहिए। लोग भोजन भी टाइम से नहीं करते हैं, काम के चक्कर में भोजन खाना भी भूल जाते हैं, फिर बीमार होते हैं। टाइम से नहीं खाना भी शरीर के साथ, शरीर में परमात्मा रहता है उसको टाइम पे भोजन नहीं देना भी अपराध है, अपराध है। परमात्मा है कि नहीं है अंदर, है तो उसको भी तो समय के ऊपर भोजन देना चाहिए ना, शरीर चलेगा तब ठीक चलेगा ना। तो जो भी है इस ये नारद जी की शिक्षा है हरियाशोक के माध्यम से हमको कि जिस स्थिति में अभी हम हैं उस स्थिति में अपने समय को बड़ी महत्व से समझें कि एक क्षण भी बेकार न गवाएं और उसका सदुपयोग करें। हरे कृष्ण। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, समय आने बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, अभी से आज से इस समय को सदुपयोग करने का नियम बना लें। हरे कृष्ण। अब मैराथन के लिए तैयार होके सब गीता उठाओ और लोगों को सब के गीता समय है, इसको पढ़ो तो समय का सदुपयोग, इसको नहीं पढ़ो तो समय का सत्यानाश, जाओ ये कथा सुनाओ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।